आप सुन रहे हैं नव भारत गोल्ड। अफगानिस्तान में ऐसे रोकना होगा चीन को। चीनी दखल काबुल तक पहुंच चुकी है। उसे रोकने के लिए भारत को अपनी रणनीति में पाकिस्तान और ईरान को शामिल करना पड़ेगा। अविनाश पालीवाल, 2 जुलाई तड़के 3 बजे। सुबह होने से पहले के उस अंधेरे समय में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बगराम एयरफील्ड चुपके से छोड़ दिया। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को इंतजार था कि अमेरिकी औपचारिक रूप से वो बेस हैंडओवर करेंगे, लेकिन उन्हें 2 घंटे बाद ही इसकी जानकारी मिल पाई। और इस बीच स्थानीय लोगों ने वहां मौजूद $35 लाख के उन छोटे हथियारों और गोला बारूद को लूटना शुरू कर दिया जिन्हें अमेरिकी छोड़कर गए थे। अमेरिका की विदेश नीति ने इस देश में पिछले 2 दशक में कई गलतियां की हैं, लेकिन ये एक घटना अफगानी लोगों की याद में उन सभी गलतियों की तुलना में ज्यादा समय तक रहेगी। इसने तालिबान का मनोबल बढ़ा दिया। ये भारत जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए भी उतना ही अपशकुन है। इस देश में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए 2001 से ही भारत अमेरिकी सुरक्षा गारंटी और स्थानीय अफगान सहयोगियों पर निर्भर रहा है। अब जैसी स्थितियां हैं उसमें भारत के अफगान सहयोगी पाकिस्तान समर्थित तालिबान को टक्कर नहीं दे पा रहे। हालांकि सैन्य और आर्थिक संसाधन के मामले में वो उतने ही मजबूत हैं। यहां तक कि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में जो तालिबान विरोध के गढ़ हुआ करते थे वहां भी तालिबान का दबदबा है। भारत की मुश्किलें यहीं खत्म होने वाली नहीं, उसकी स्थिति को और अधिक जटिल बनाने के लिए चीन भी उतर आया है। ड्रैगन कथित तौर पर अफगानिस्तान को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए काबुल पेशावर हाईवे जैसी योजनाओं में तेजी ला रहा है। धार्मिक उग्रवाद, चारों तरफ हो रही हिंसा और पाकिस्तान के साथ चीन की एंट्री ने भारत के लिए एक अभूतपूर्व जियोपॉलिटिकल स्थिति बना दी है। इससे अफगानिस्तान को लेकर स्वतंत्र भारत की नीति में बदलाव की संभावना बनती है। ऐसा बदलाव जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रणनीति संतुलन बने। पाकिस्तान को अपनी अफगानिस्तान नीति सौंपने की बीजिंग की प्रवृत्ति को देखते हुए इस्लामाबाद और काबुल के बीच संतुलन का प्रश्न विवादास्पद हो जाएगा। भले ही पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर आम अफगान राय आलोचनात्मक बनी रहे, काबुल के लिए कोई भी अमरीकी आर्थिक मदद और पड़ोस में अप्रत्याशित आतंकवाद विरोधी क्षमता इस रणनीतिक हकीकत को नहीं बदल पाएगी। एक ये तर्क दिया जा सकता है कि अतीत में भी भारत और चीन ने गुपचुप सहयोग किया है। साथ ही अफगानिस्तान और धार्मिक अतिवाद के मुद्दे पर समानताएं हैं, लेकिन याद रखिए वो 2013 की बात थी और ये 2021 है। बीजिंग विरोधी इस्लामी चरमपंथियों से आज चीन को कम खतरा है। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ चुकी है। अगर बीजिंग को 2013 में भारत के साथ सहयोग में फायदा दिख रहा था, तो आज वो चीन केंद्रित चरमपंथियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के नेतृत्व में अधिक सहज है। इसके उलट भी एक भावना हो सकती है। कुछ अमरीकी और भारतीय धड़ों की ये सोच हो सकती है कि दूसरी शक्तियों की तरह चीन भी अफगानिस्तान में फंस जाएगा। हालांकि नीति बनाने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये सोच खतरनाक है। ऐसे में दक्षिण एशिया में चीन जिस तरह से शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है वो सीखने वाला है। दुनिया को लेकर बीजिंग का जो नजरिया है उसे वो कभी भी उस देश पर नहीं थोपता जो उसके निशाने पर है। हमारे सामने उदाहरण है म्यांमार का। फरवरी में तख्तापलट के बाद चीन ने बहुत जल्द नए हालात से तालमेल बिठा लिया। आंग सान सू की के रूप में एक सहयोगी के जाने और चीनी फैक्ट्रियों पर प्रदर्शनकारियों के हमले को वो झेल गया। बातचीत का विकल्प चुनने के बजाय उसने सैनिक सरकार के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। इसका मतलब हुआ कि अफगानिस्तान में भी चीन तालिबान के उदय को स्वीकार कर लेगा। भले ही तालिबान ने ताकत का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल की हो और उसका नेतृत्व हक्कानी के हाथों में हो, जब तक कि चीन केंद्रित आतंकवादी निष्क्रिय हैं और खुद उसके अपने हितों पर चोट नहीं पहुंचती, बीजिंग डरने वाला नहीं है। इस स्थिति में अपनी पोजीशन पाने के लिए भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर काम करना है। सबसे पहला कदम होना चाहिए अमेरिका और क्वाड सहयोगियों के साथ समन्वय के अलावा ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करना। भारत को अफगानिस्तान के साथ जुड़ने का एक जरिया चाहिए। फिलहाल सबसे व्यवहारिक विकल्प है चाबहार या बंदर अब्बास। अगर खबरें सही हैं तो ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी हाल में अफगानिस्तान में युद्ध के समय के गठबंधन को मजबूत कर रहे थे। उन्हें तलाश थी तालिबान के अंदर और बाहर नए सहयोगियों की। अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्तों और चीन से दोस्ती के बावजूद ईरान को अफगानिस्तान में पाकिस्तान नियंत्रित और सुन्नी प्रभाव वाले तालिबानी इस्लामी शासन पर एतराज रहा है। हालांकि 2016 में ईरान से अस्पष्ट परिस्थितियों में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी एक जटिल मुद्दा है, फिर भी काबुल के मसले पर भारत और ईरान के बीच मतभेद कम और एकमत वाली चीजें ज्यादा हैं। अब दूसरे कदम की बात, काबुल के साथियों के साथ सहयोग को कायम रखा जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि कूटनीतिक, सैन्य और वित्तीय मदद मिलती रहेगी। भारत नहीं चाहेगा कि अमेरिका जिस तरह इस देश को छोड़कर जा रहा है उसी तरह उसे भी याद रखा जाए। जलालाबाद और हेरात में वाणिज्य दूतावास बंद होने के बावजूद भारत मजार शरीफ और कंधार में अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा। सभी पक्षधारों से सीधा संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जमीनी स्तर पर भारत की मौजूदगी हो। यहां एक चीज मददगार है कि नई दिल्ली ने सावधानी पूर्वक तालिबान से जुड़ने का निर्णय लिया है। ये पक्ष लेना नहीं है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में चीनी प्रभाव को सीमित रखने के प्रति भारत गंभीर है, काबुल और इस्लामाबाद के बीच संतुलन रखना चाहता है, तो फिर तालिबान से जुड़ने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। और अब सबसे आखिरी कदम, अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी के लिए भारत को पाकिस्तान से बैक चैनल से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ का ये दावा गलत है कि बैक चैनल बंद हो चुका है। आबू धाबी की निगरानी में ये रास्ता अब भी खुला है। हाँ, ये जरूर है कि अफगानिस्तान में भारतीय मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान का जो डर है उसकी वजह से कोई समझ बन पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये असंभव काम नहीं। नई दिल्ली के साथ तालिबान की स्थिर संबंध बहाल करने की इच्छा को पाकिस्तान रोक नहीं सकता। लेखक SOAS यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाते हैं, माय एनिमीज एनिमी इंडिया इन अफगानिस्तान फ्रॉम द सोवियत इन्वेजन टू द US विड्रॉल के लेखक हैं।
इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफोटेनमेंट सर्विस नव भारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नव भारत गोल्ड.com पर।